नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। आज महावीर जयंती है। महावीर जी को आज सभी हम बहुत ही श्रद्धा से, भावना से याद कर रहे हैं। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाई। उनके सिद्धांत आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं। समाज में यदि उन्हें आज आचरण में लाया जाए तो सचमुच समाज को श्रेष्ठ समाज बनाया जा सकता है। भले ही ईसा पूर्व उन्होंने अपनी इन शिक्षाओं को दिया, लेकिन आज भी वो सारी शिक्षाएं मानव जीवन के लिए बहुत बहुत महत्व रखते हैं। ईसा पूर्व 599 के वर्ष में उनका जन्म हुआ। एक राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने सत्य की खोज में अपना पूरा राजपाट त्याग दिया और सत्य की तलाश में निकल पड़े। उनका जीवन हम सब के लिए बहुत आदर्श है, न केवल जैन समाज के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए। आज उनकी जन्म जयंती है, तो आइए आज के समाधान को उन्हें अर्पित करते हैं और उनकी शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि समाज को उनकी शिक्षाओं के मूल्य का पता चले। और स्वागत करते हैं आज के इस कड़ी में आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
दादा जी, जब कभी हम अपने महापुरुषों को, महात्माओं को, या जो भी धर्म स्थापक हैं उन्हें याद करते हैं, तो सिर स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाता है। और उनकी शिक्षाएं जो थी तब जब उन्होंने दी थी, तब जितने प्रासंगिक थे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं, ऐसा महसूस होता है।
उससे भी ज्यादा इनकी आवश्यकता आज है। और वास्तव में ये सभी महान पुरुष इस विश्व गगन में चमकते हुए सितारे हैं। इनके नाम के कारण भारत का नाम है। भारत एक महान देश, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने जन्म दिया जिसने समाज को समय प्रति समय नई दिशा प्रदान की। अनेक बातें हों, क्योंकि इतिहास है और तब का अब, इतने साल पहले, 2500 साल पहले की बातें लिखी हुई, अब वो कहां तक सत्य हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उनकी शिक्षाएं सचमुच बहुत ही महत्व की हैं। स्वामी जी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। महावीर के नाम से वो बहुत प्रख्यात हैं। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी। हमारे यहीं पास श्री सिरोही में ही उनकी सबसे प्रसिद्ध यादगार, जब एक चरावाहे ने उनके कानों में और अंगों पर कील ठोक दिए थे और वो बिल्कुल अचल अडोल अपनी तपस्या में मगन रहे थे, तो ये उनकी आंतरिक बहादुरी का प्रतीक है कि न उनके मन में उस व्यक्ति के लिए कोई शत्रु भाव पैदा हुआ और न ही उन्होंने अपनी साधनाओं को छोड़ा। वो चाहते तो उसे एक लात मार के धराशायी कर सकते थे, परंतु तपस्या का संबंध सहनशीलता से बहुत गहन है। तपस्या स्वयं में ही बहुत कुछ सहन करना सिखा देती है, तो इसलिए उनको बहुत महावीर भी कहा जाता है, बहुत बड़े महावीर। जैन समाज के वो अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और ये माना जाता है कि उन्होंने अपने परम पद को प्राप्त कर लिया, उन्होंने अपनी कर्म इंद्रियों को जीत लिया, तो वहीं से जैन समाज में जय जिनेन्द्र, ये जैसे हिंदुओं में राम राम, जय श्री कृष्ण और नमस्ते जिनेन्द्र, इनके यहाँ प्रचलित हो गया। यानी कर्मेंद्रियों को जीत, तो ये एक दूसरे को याद दिलाने लगे। स्वामी जी ने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। सचमुच उस टाइम इन चीजों की जरूरत थी, लेकिन आज बहुत जरूरत है। हालांकि ये बात हिंदू धर्म में भी प्रचलित हैं और सभी धर्मों में इनकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बात यह है कि मनुष्य उनको कितना अपना पाया है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है।
दत्त जी, एक विशेष बात जो महावीर स्वामी जी के लिए कही जाती है कि उन्होंने कठोर साधना की और उसके पश्चात अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त की। आज भी हम देखते हैं कि लोग अपने कर्मेंद्रियों के बहुत वश हैं, आंखें कभी धोखा दे रही हैं, कभी कान धोखा दे रहे हैं, कभी जिह्वा धोखा दे रही है, मतलब अपनी कर्मेंद्रियों के संपूर्ण अधीन है। और लोग ये मान के चलते हैं कि शायद अपनी कर्मेंद्रियों को नहीं जीता जा सकता। तो महावीर स्वामी जी ने कठोर तप से अपनी कर्मेंद्रियों को जीता, तो क्या कर्मेंद्रियों को जीतने के लिए ऐसी ही कठोर साधना की आवश्यकता हरेक व्यक्ति को है?
ये ऐसा दृष्टांत लोगों के सामने रहा, तो लोगों ने ये मान लिया कि ये काम
हमसे नहीं
कठिन है,
बिल्कुल,
इसलिए उन्होंने तो कठिन साधनाएं की। भले ही हम जैन समाज में हैं, लेकिन हम तो ग्रस्त में हैं, अपने काम धंधों में हैं, हम ये साधनाएं नहीं कर सकते, इसलिए कर्मेंद्रियों को जीतना ये हमारे वश की बात भी नहीं है। इसलिए भले ही स्वामी जी ने जैन समाज के लिए खान पान की भी बहुत अच्छी धारणाएं रखी, बहुत सुंदर रखी, वो हमारे बहुत सारे फ्रेंड जैन समाज से जुड़े हुए, मुझे हंसी आ रही है भाई, आलू नहीं खाना है लेकिन चुपचाप खा लेते हैं बेचारों को, क्या करें, अभी जीभ के रस को वो जीत नहीं पाते हैं। ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं, चाहे जीभ का रस हो, चाहे कानों का रस हो, चाहे मुख का रस हो, चाहे आंखों का रस हो, चाहे स्पर्श का सुख हो, उस सबको जीतना अब जो भगवान ने सत्य ज्ञान दिया है वो बहुत कठिन काम नहीं रह गया, लेकिन एक लंबी साधना की आवश्यकता अवश्य होती है। उसमें न वस्त्र त्यागने की जरूरत है, न सदा खड़े रहने की जरूरत है। उस समय इन लोगों ने ये सब किया और एक कठिन साधना और त्याग का बल पूरे संसार को मिलता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी धर्म के नेता या संस्थापक यदि बहुत महान रहे हैं तो उसकी छाप उस पूरे धर्म पर देखी जा सकती है। इसलिए जैन समाज में आज भी बहुत चीजें कायम हैं, चाहे खान पान की शुद्धि की बात हो, अपेक्षाकृत वो बहुत अच्छी है, और भी कुछ धारणाएं उनके जीवन में दिखाई देती हैं।
तो भ्राता जी, इन्हें जीते ये तो खैर एक दूसरा विषय है, लेकिन क्यों जीते शायद इसकी महत्ता को जानना हाँ। बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई इतना संयम, इतना नियम, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो शायद इसकी महत्ता कि अपने कर्मेंद्रियों को जीतना क्यों जरूरी है, शायद ये बहुत जरूरी है। मैं इस पर प्रकाश चाहूंगा आपसे।
वहां भी इसकी चर्चा है कि अगर तुमको मोक्ष पद चाहिए, अगर तुमको परम पद चाहिए, तो तुम्हें कर्मेंद्रिय जीत बनना ही पड़ेगा। तुम्हें ये साधनाएं, ये सद्गुण, आगे हम उन पर आ रहे हैं, स्वामी जी ने जिन सद्गुणों की चर्चा की उसमें से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब धारणाएं थी। चोरी न करना, ब्रह्मचर्य की पालना करना, सत्य पे चलना, अहिंसा का तो इनके पास बहुत ही ज्यादा महत्व है। लेकिन भगवान ने जब आकर बताया अहिंसा का भी एक दूसरा अर्थ और जोड़ दिया जो उसमें भी है। दो महान शत्रु हैं मनुष्य के, स्वामी जी ने भी ये बात कही कि बाह्य शत्रुओं से भी कहीं प्रबल हैं आंतरिक शत्रु,
जो क्रोध है,
काम है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, दूसरे के लिए बुरी भावनाएं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा, ये कष्ट देना, दुख देना, ये भी हिंसा है। इसलिए किसी को दुख न दो, ये भी मान्यता बहुत चलती आई। तो ये सब सुंदर धारणाएं स्वामी जी ने अपने जीवन में लाई और सबको भी बहुत प्रेरित किया कि इन्हीं को तुम्हें अपनाना है। तो एक समाज का बड़ा समूह उनके साथ जुड़ गया। ये धर्म का नाम तो किसी भी एक संगठन पर बाद में पड़ता है, पहले उनके अनुयायी होते हैं, यानी उनको फॉलो करने वाले, उनकी अच्छी धारणाओं को जीवन में अपनाने वाले। तो आपने जैसे पूछा, पहली बात थी कर्मेंद्रिय जीत क्यों बनना है, तो लक्ष्य था परम पद को प्राप्त करना, लक्ष्य था मोक्ष को प्राप्त करना, उसके लिए कर्मेंद्रिय जीत बनना, संपूर्ण पवित्र बनना, ये जो बुराइयां मनुष्य के जीवन में आ गई हैं, चोरी करना और भी बहुत सारी, दूसरे की निंदा करना, दूसरे का धन हड़प लेना, दूसरे को परेशान करना, कटु वचन बोलना, हिंसा करना भिन्न भिन्न तरह से, क्योंकि हिंसा का एक बहुत गहरा प्रभाव एक सूक्ष्म वाइब्रेशंस के रूप में दिखाया गया है कि जब बहुत हिंसा होती है, अभी मांसाहारी लोग हिंसा ही करते हैं, वो ना करें तो उनके लिए कोई दूसरा करता है, इसके वाइब्रेशंस से प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। जब ये वाइब्रेशंस प्रबल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति में ये विस्फोटक बनकर उभरते हैं, और एक बहुत बड़ा विस्फोट, चाहे भूकंप के रूप में, चाहे कोई और आपदा विपदा के रूप में, मनुष्य के पास आ जाता है। इन सब से मुक्त होकर मोक्ष की ओर चलना, इसके लिए कर्मेंद्रिय जीत बनना आवश्यक था, क्योंकि मोक्ष की जो अंतिम स्थिति मानी गई है, मन बिल्कुल निर्संकल्प हो जाए, बिल्कुल मग्न अवस्था हो जाए, तो ऐसी स्थिति से परम पद की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्मेंद्रियों को जीतना परम आवश्यक था इस स्थिति तक पहुंचने के लिए। मनुष्य की आंखें अगर कुछ सुंदर चीजें देखने में लग जाएंगी तो मन उन पर अवश्य चलता रहेगा। उसके कान यदि व्यर्थ बातें सुनते रहेंगे तो मन की एकाग्रता कभी नहीं हो सकेगी। जीभ यदि भिन्न भिन्न रसों की डिमांड करती रहेगी तो उन रसों को पाने में, धन कमाने में मनुष्य तत्पर हो जाएगा और उसकी मन की एकाग्रता कदापि नहीं हो पाएगी। इसलिए कर्मेंद्रियों को जीतने का परम महत्व है किसी भी साधना में, चाहे वो राजयोग की साधना हो। राजयोग में तो हम ये कहते हैं किसी भी रस में यदि हम लिप्त हैं तो ईश्वरीय रस हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सब कर्मेंद्रियों के रसों से हमें ऊपर उठना ही पड़ता है।
बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये बात रही कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए या परम पद की प्राप्ति के लिए हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करना है, इन्हें जीतना है। लेकिन शायद आज इनकी चर्चा बहुत कम है कि हमें मोक्ष मिले या परम पद मिले। मुझे नहीं लगता कि शायद एक सामान्य वर्ग में इसकी कोई चर्चा है, होनी अवश्य चाहिए।
0.0001% भी लोग इस पे विचार नहीं करते। वो कहते मुक्ति क्या होती है, आनंद तो यहाँ है, मुक्ति तो वो सोचते हैं जो बहुत दुखी हो जाते हैं, जीवन से तंग हो गए, भाई मुक्ति चाहिए, भगवान ने क्यों भेज दिया हमें इस दुनिया में, हमें यह दुनिया पसंद नहीं है, अब तो हमें यहाँ से ले चले। और अगर भगवान का बुलावा आ जाए तो कहेंगे थोड़ा ठहर जाओ।
आपको क्या लगता है भ्राता जी, क्या सचमुच इसकी आवश्यकता है या मनुष्य जिस सुख को भोग रहा है उस सुख को उसे भोगने दिया जाए?
सुख को भोगना ये भौतिकवाद की ओर मनुष्य को बढ़ाता है। इससे बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता है, बॉडी कॉन्शियसनेस से विकारों की उत्पत्ति होती है और फाइनली मनुष्य का पतन होने लगता है। इसलिए ये जो बाह्य सुख है इसको भोगना ये तो नहीं कहा जा सकता कि न भोगो। अब किसी के पास बहुत सुखों के साधन है, वो उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनको विकारों की ओर टर्न न कर दें, उनके अधीन हम न हो जाएं, इसका हमें बहुत ध्यान रखना। मान लो बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी का समय चल रहा है, अब किसी को एसी में रहने की आदत पड़ जाती है, एसी में रहना कौन नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे। लेकिन अगर काम करने के लिए बाहर जाना है, जाना तो पड़ेगा, सारा दिन घर में कैसे बैठे रहेंगे। और उसे अपने ऑफिस से भी बाहर निकलना है, अब गर्मी में जाना है, उसके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अब सारी फैक्ट्री में तो एसी नहीं है, ऑफिस में एसी है, लेकिन अगर वो इसके अधीन हो गए इस सुख के और वो कहे मैं तो नहीं जाऊंगा अब, तो उसका कार्य ठप हो सकता है, उसको कई जगह से नुकसान हो सकता है, उसके अधिकारी उसके कर्मचारी मिसयूज कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं उसकी अधीनता का। तो हमें सुख तो अवश्य लेने चाहिए, क्योंकि सुख भी मनुष्य के लिए ही बने हैं, हम उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन इन सुखों के हम अगर अधीन हो गए तो हम कर्मेंद्रियों के रस के अधीन हो गए, और तब वो व्यक्ति जो एक श्रेष्ठ मार्ग पर चलना चाहता है, जिसका लक्ष्य कुछ बहुत महान है, वो उस लक्ष्य को नहीं पा सकता।
भ्राता जी, मैं आपके अनुभव से जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी लंबे काल से साधना कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों के रस जो हैं, चाहे देखने का, सुनने का, भोगने का, ये रस श्रेष्ठ हैं या फिर इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेने के बाद हमें जो परम रस प्राप्त होता है वो श्रेष्ठ है?
सब जानते हैं एक मत से कि श्रेष्ठ तो परम रस ही है, ईश्वरीय रस है, आत्मिक रस है, लेकिन उसकी साधना करनी आवश्यक है। हमारे राजयोग के मार्ग में भी मैं आत्मा हूँ, इस पर एकाग्र होना, अपने को आत्मभिमानी बनाना और उसके द्वारा अतींद्रिय सुखों का अनुभव करना, ये एक मुख्य लक्ष्य है। इसलिए ईश्वरीय महावाक्य ही है कि ये अतींद्रिय सुख उन्हें प्राप्त होता है जो लंबा समय आत्मभिमानी स्थिति में रहते हैं, सोल कॉन्सियस होकर रहते हैं। और यही कर्मेंद्रियों के रसों को जीतने का तरीका है कि हम अगर आत्मा बन जाएं। इसलिए सभी साधक लोग यही एकाग्र करते हैं, बिल्कुल एकाग्र करते करते चित्त को शांत कर देते हैं। राजयोग का एक कदम और है कि परमात्म स्वरूप पर भी एकाग्र करना, उस पर अब हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करते करते, ये अभ्यास करते करते कि मैं इस देह से अलग हूँ, ये कर्मेंद्रियां तो देह से जुड़ी हैं, ये उसके सब्जेक्ट हैं, मैं तो आत्मा हूँ, इस देह से अलग हूँ, जैसे जैसे हम इस तरह का अभ्यास करते करते आत्मविमानी बनते जाते हैं, तो ये कर्मेंद्रियों के रस स्वतः ही ढीले और फीके पड़ने लगते हैं
और हम फिर हमें बढ़ने लगते हैं।
बहुत बढ़ने लगता है, फिर हमें सुंदर चीजें देखना, इधर उधर देखने में ज्यादा आनंद नहीं रह जाता। मान लो टीवी की बात है जिसका क्रेज आजकल लोगों को बहुत है, या इंटरनेट है, उसमें क्षणिक सुख मिलता है, मनुष्य का मनोरंजन होता है, लेकिन जो ऐश्वर्य होने का सुख है वो उससे हजार गुना ज्यादा होता है। जो उस सुख को चखने लगता है उसे जीभ का सुख, जो स्वाद के रूप में है उसे कानों का सुख, स्वतः ही गौण प्रतीत होने लगता है।
कई लोग ऐसा मानते हैं भ्राता जी कि यदि हमारी कर्मेंद्रियां हमें खींच रही हैं, तो हम क्यों दबाव पूर्वक, हठ पूर्वक, जैसे कई साधु संतों को वो देखते हैं कि हठ पूर्वक अपनी कर्मेंद्रियों का दमन करते हैं, अपने मन का दमन करते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा दमन क्यों किया जाए, इससे आखिर फायदा क्या है? यदि हमारा मन चाह रहा है, हमारी कर्मेंद्रियां हमें कह रही हैं, तो उन्हें भोग लेने में क्या हर्ज है?
बिल्कुल, ये वन्यता उनकी सत्य है, लेकिन एक बात वो नहीं जानते कि बार बार भोग करने से आसक्तियां बढ़ती ही रहेंगी। मान लो खाने की बात हम ले लें, हम सोचते हैं कि हमें तो रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, हमने दो चार बार खाया, बहुत आनंद आता है, सुख मिल जाता है, हमारे पास पैसा भी है, क्यों ना हम इसको खाते रहें। रसगुल्ला खाना अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है, खाते रहें, रस लेते रहें, लेकिन जब वो नुकसान देने लगेगा, जब वो डायबिटीज पैदा करेगा, तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए खाएं, कंट्रोल में खाएं, और ये कंट्रोल तब मनुष्य कर सकता है जब वो सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करता रहे। इसलिए ये एक बहुत यूनिवर्सल या इटर्नल सिद्धांत है कि कर्मेंद्रियों के रसों का भोग करने से उनमें आसक्ति होगी और भोग की इच्छा बढ़ती ही जाएगी, और एक दिन वो आएगा कि मनुष्य उस भोग विलास के बहुत अधीन हो जाएगा।
तो भैया जी, वो बात कही जाती है शायद कि आप भय बूढ़े तृष्णा भय जवान, तो जितनी ज्यादा हमारी तृष्णाएं बढ़ती जाती या हम भोगते हैं, तो शायद ये जो इच्छाएं कामनाएं हैं बढ़ती जाती हैं। एक मूल बात जो भैया जी, जो लोगों ने ये मान लिया है कि अपनी कर्मेंद्रियों को नहीं जीता जा सकता, तो आपने कहा राजयोग से बहुत सहजता से जीता जा सकता है, कैसे सहज है राजयोग से जीतना, संक्षिप्त में चाहूंगा।
ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही, मेरे पास ऐसे बूढ़ों के ही नहीं, यंग लोगों के अनुभव आते हैं जो अपनी इन कर्मेंद्रियों के रसों से इतने दुखी हो गए हैं कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। इवन यंग व्यक्ति है 20-22 साल का, उसे अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन देने हैं, लेकिन उसका मन और बुद्धि इतनी विचलित हो गई है कि वो उनको एकाग्र कर ही नहीं पा रहा, उसको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगता है। मैं जब उसकी जीवन कहानी पूछता हूं तो इशारे बता देते हैं, हम बुरे संग में आके बहुत गलत काम करते रहे। तो इनको जीतने का एक ही तरीका है कि हम बार बार अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूं, इस देह की मालिक हूं, कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, मैं स्वराज अधिकारी हूं, और मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली भी हूं और इनकी मालिक भी हूं। इस स्मृति से हमें बहुत पावर आ जाएगी, और हम अगर रसगुल्ला खाना चाहेंगे खाएंगे, और कहेंगे नो तो नहीं खाएंगे,
मतलब एक संपूर्ण नियंत्रण आ जाएगा अपने ऊपर। प्रताप जी, एक विशेष बात कही है महावीर स्वामी जी ने कि धर्म में दिखावा नहीं होना चाहिए, यदि दिखावा है धर्म में तो वो दुख का कारण बन जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सभी प्रायः जितने भी धर्म है सब में दिखावा ज्यादा आ गया है, और धर्म का जो मूल है वो आचरण से जैसे विलुप्त हो गया है, तो कैसे
कहीं
धर्म जीवन में,
चाहे धर्म हो, दिखावा आ गया, शो ऑफ कहते हैं इसको लोग, जहां ये शो ऑफ आ गया वहां जो रियल शक्ति है धर्म की वो नष्ट हो जाती है। धर्म की शक्ति साधनाओं में है, धर्म की शक्ति उन बातों में है कि धर्म में जो शिक्षाएं दी हैं उनको हम अपने जीवन में ले आएं। अगर वो शिक्षाएं हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, हम उनकी चर्चाएं तो बहुत कर रहे हैं, उन पे लेक्चर तो बहुत अच्छे देते हैं, हम ये तो बहुत गर्व करते हैं कि हमारे धर्म में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन मनुष्यों के जीवन में वो नहीं है, तो ऐसा धर्म निर्बल हो जाता है और उससे मनुष्य को कोई वास्तविक सुख शांति का आभास नहीं होता है। इसलिए चाहे कोई भी धर्म और कोई भी कार्य हो, दिखावे की आदत हमारी रियलिटी को नष्ट कर देती है, और आखिर वास्तविकता भी तो दिखाई देगी ही कभी ना कभी।
बिल्कुल,
वो छुप नहीं सकती, संसार का नियम ही ऐसा है। सच्चाई को आप कितना भी दबाओ छुपाओ वो तो बाहर आएगी ही। इसलिए हमें रियल स्वरूप में ही रहना चाहिए, और धर्मों को एक ऐसा पवित्र स्वरूप अब देने की जरूरत है, विशेषकर इस समय, जिससे वो समाज को, युवा वर्ग को, सभी मनुष्यों को जीवन में एक नई राह दिखा सके। धर्म ही तो मनुष्य को राह दिखाएगा। धर्म का सीधा सा अर्थ ये श्रेष्ठ धारणा है, जिन पांच धारणाओं की हमने चर्चा की, जो स्वामी जी ने वर्णन किया है, और सभी धर्मों में उनको समान रूप से मान्यता है।
बिल्कुल व्रत जी, जो महावीर स्वामी जी ने विशेष बात कही है कि हमें सत्य बोलना चाहिए या अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि सत्य पथ पर चलना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना बहुत कठिन हो गया है, और जो ऐसा करते हैं उन्हें भी लोग कहते हैं कि ये कितने दिन कर पाएगा। तो आज के दौर में ये कितना प्रासंगिक है, कैसे इसे प्रैक्टिकल किया जा सकता है?
बिल्कुल, लोग ये मानने लगे कि वर्तमान समय में सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है।
जी,
सत्य एक ऐसी चीज है जो बस पुस्तकों में है, उपदेशों में
या
है,
सतयुग में
होगा। सत्य का ही राज्य है, लोग उस सामने बैठकर बात करते हैं, हमारा व्यापार है, हम बड़े ऑफिसर हैं, सत्य पे चलते हैं तो हमारा काम धंधा चलता ही नहीं है, कोई हमारी बात नहीं सुनता है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं, इनको कहते हैं वो तरीके, युक्तियां, उसका आधार लेना ही पड़ता है काम निकालने के लिए। भाई इधर को सत्य है लेकिन मार्ग बहुत कठिन है, इधर का मार्ग बिल्कुल सरल है, उस पर हमें चलना पड़ता है। लेकिन इससे मानवता का पतन होता जा रहा है। ये सिद्धांत तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनको कोई नकार नहीं सकता। सत्य में बहुत शक्ति है, सत्य की फाइनल विजय होती ही है, लेकिन आजकल के संदर्भ में सत्य को बहुत फेस करना पड़ता है। सत्य के साथी कोई नहीं होते, असत्य के साथी हजारों मिल जाएंगे। इसलिए मनुष्य भी अपना मार्ग ऐसा निकाल देता है, लेकिन फिर भी हम इस बात को अवश्य कहेंगे कि अपने कर्मों को सत्य बनाना चाहिए। बात केवल सत्य बोलने की नहीं, अपने कर्मों में सत्यता लाएं, धन कमाने में सत्यता का जहां तक हो सके प्रयोग करें, और अपने अंदर सत्य की एक बहुत बड़ी शक्ति को धारण करें।
इसी प्रकार बता जी, उन्होंने अस्तेय की बात कही है, चोरी न करना, या अपरिग्रह की बात कही है कि संग्रह वृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक इसके उलट आज देखने में आ रहा है।
सभी चोर बन गए हैं, कोई चुपके से
बड़े बड़े घोटाले सुनने को मिलते रहते हैं,
इन चोरों को दंड दिए जाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन ऐसे सभी चोर हैं, सब जानते हैं, इसकी चर्चा हमें करने की जरूरत नहीं, रोज हम इसकी बातें सुन रहे हैं। रॉयल चोर पैदा हो गए हैं आजकल, और से मानवता पर एक धब्बा लग रहा
मतलब
है।
बहुत ज्यादा निराशा होती है जब कभी हम अपने महापुरुषों की इन शिक्षाओं को ध्यान में लाते हैं, और जब आज की स्थिति देखते हैं तो लगता है कि क्या होगा, भगवान मालिक है।
मालिक तो भगवान ही है, और वो अपने मालिकपन को पूरा कर रहा है, तो इस असत्य की दुनिया को सत्य की दुनिया में बदलने का उसका ही दिव्य कार्य चल रहा है। लेकिन अपरिग्रह विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो साधक हैं, और उन सब के लिए भी जो जीवन को सुख शांति से भरपूर करना चाहते हैं। स्वामी महावीर जी ने भी, महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में और अनेक साधनाओं में इस शब्द का प्रयोग किया है। अपरिग्रह यानी आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। अब से 100 साल पहले हमारे देखते देखते हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे, घर में दूध पैदा, दूध की गाय है या भैंस है, दूध होता है, जो घर में खर्च हुआ रोज हुआ, बाकी पड़ोसियों का
जी।
अन्न पैदा हो रहा, कई चीजें घरों में खेतों में पैदा हो रही हैं, अपने लिए यूज हुआ, जो बचा वो सब बांट दिया।
सब्जियां भी जितनी ज्यादा होती थी वो भी बांट
दिया। बेचने का नाम नहीं, हमें याद है, हम थोड़े बड़े हो गए थे, पहली बार हमारे गांव में कोई दूध लेने वाला आया था, लोग घूर के देख रहे थे कौन दूध बेच रहा है। उसको बड़ा बुरी नजर से उन दिनों देखा गया था, और एक साल में वो सब बदल गया, सबने बेचना शुरू कर दिया। हालांकि तब तो 50 पैसे किलो ही था दूध। तो ये चीजें ऐसी हैं, बहुत चीजें इकट्ठी इकट्ठे करने से मन पर एक विशेष रूप का प्रेशर आ जाता है और एक योग अभ्यास करने वाला, कोई साधना करने वाला व्यक्ति संपूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हो पाता है। इसलिए हमें एकाग्र जो संग्रह वृत्ति है इससे थोड़ा बचना चाहिए, एकाग्र वृत्ति को बढ़ाने के लिए। रही बात दुनिया की, दुनिया में भिन्न भिन्न तरह से लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं और हम बहुतों की कहानी जानते हैं कि धन बहुत हो गया तो बच्चे और कोई धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं। किसी ने सुनाया था कि ऐसा एक नेता का लड़का है, उसका रोज का खर्च 64,000 रुपए है रोज का। अब वो क्या खाता होगा, नोट खाता है क्या खाता है? हम तो सुन के हैरान हो गए कि अगर वो इतने धन को परोपकार में लगाए तो शायद प्रधानमंत्री उसका बाप ही बन जाए अगली बार।
जी जी ब्रदर जी, चलिए बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं और शिक्षाएं तो सचमुच बहुत अद्भुत हैं। मैं अंततः ये जानना चाहूंगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आज के शुभ दिवस पर न केवल पूरे जैन समुदाय को बल्कि समूचे विश्व को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम बहुत प्रसन्न हैं, मेरे जैसे मैंने कहा बहुत सारे साथी जैन धर्म से बिलोंग करते हैं और हम लोगों का बड़ा आपस में प्यार है और मैं उन सब का बहुत सम्मान करता हूं। मैं अपने सभी संसार को स्वामी जी का ये संदेश देना चाहूंगा कि आज के इस सुंदर दिवस पर एक सारे संसार में हम एक लहर फैला दें कि हमें महावीर जी की कोई एक शिक्षा को अपने जीवन में अवश्य अपना लेना चाहिए, कोई एक सुंदर धारणा। मान लो अहिंसा की ही बात है जो उनका बहुत सुंदर सिद्धांत है, हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, हम बोल से किसी की हिंसा नहीं करेंगे। किसी की खुशी की हत्या कर देना ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। तो आज के संदर्भ में मैं सभी सारे संसार को इस महापुरुष के जन्मदिन की शुभ हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से और सभी से ये आग्रह करूंगा कि अहिंसा का एक स्वरूप अपने जीवन में अवश्य अपना लें कि आज से हम अपने वचनों के द्वारा सभी को सुख देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी, बहुत सुंदर संदेश आपने समूचे विश्व समुदाय को दिया है। आशा करते हैं कि इन सभी सुंदर बातों को लोग अपने जीवन में धारण करेंगे और समाज का एक सुंदर प्रारूप हमारे सामने बहुत जल्दी उपस्थित होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत सुंदर दिवस है महावीर जयंती, एक ऐसे महामानव का जन्म दिवस आज जो सचमुच हमें बहुत प्रेरणा प्रदान करते हैं। मैं तो सोचता हूं कि उनका पूरा जीवन कितना श्रेष्ठता, कितनी महानता से भरा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई कमी, किसी प्रकार का कोई अभाव उनके जीवन में नहीं था। एक राज परिवार में वो थे, राजकुमार थे, धन धान्य से भरपूर थे, लेकिन सत्य की तलाश में उन्होंने इन सब चीजों को ठोकर मार दी। समाज के कल्याण के लिए उन्होंने इन सब चीजों को छोड़ दिया। विचार करें, आज हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिन्हें उन्होंने एक पल में छोड़ दिया था, लेकिन इसके ऊपर बहुत कुछ है। सत्य हमें जीवन में आनंद प्रदान करता है, समाज की सेवा हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाता है और ये सारी दिव्य धारणाएं जिनकी शिक्षा उन्होंने दी है सचमुच हमें मानव से महामानव बना देता है। तो आज के शुभ दिवस पर इन सभी धारणाओं को अपने जीवन में लाने का श्रेष्ठ संकल्प लें, तभी महावीर जयंती मनाना हम सबके लिए बहुत बहुत सुखद और श्रेयस्कर होगा। आज के शुभ दिवस की आप सबको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र।